आज है 30 जनवरी दिन सोमवार। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार। मुस्लिम देशों के शरणार्थियों के अमेरिका में घुसने पर पाबंदी के फैसले के बाद कई अमरीकी शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों का उबाल। ब्रिटेन के 10 लाख लोगों ने कहा ट्रंप को दिया न्योता वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनय राय और इतिहासकार रामचंद्र गुहा जैसे प्रतिष्ठित नागरिकों को बीसीसीआई की बागडोर सौंपी। और दिल्ली के पास अघापुर गांव में नौजवान आखिर क्यों सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं?
हम बिग बॉस के घर में पहुंच सकते हैं, धुआं उठा सकते हैं और लठ भी गाड़ सकते हैं,
लेकिन
ये सब आएगा एक के बाद एक। लेकिन विश्व समाचारों के बाद
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने विवादित आदेश को सही ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीते सप्ताह के आखिरी दिनों में कुल 3,25,000 यात्रियों में से सिर्फ 109 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कई हवाई अड्डों पर जो काम में बाधा आई है उसके पीछे डेल्टा एयरलाइन के कंप्यूटरों में आई गड़बड़ी और प्रदर्शनकारियों की हरकतें हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर चक शुमर को भी फटकार लगाई है। शुमर ने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि मुस्लिम देशों से लोगों के अमेरिका आने पर लगी पाबंदी के कारण स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की गालों से आंसुओं की धारा बह रही है। उधर यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फ्रेडरिका मोगेरिनी ने कहा है, यूरोप में हमारा इतिहास है जिसने हमें सिखाया है कि हर बार जब कोई भेदभाव और दीवारें खड़ी करता है तो आप खुद उस जेल के भीतर खुद को पाते हैं जो आपने अपने चारों ओर खड़ी की हैं। और हमारे पास इतिहास, परंपरा और ऐसी पहचान है जो इस बात पर आधारित है कि हम दीवारों के गिरने और जोड़ने वाले पुलों के बनने का जश्न मनाते हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फ्रेडरिका मोगेरिनी के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर लगी इस रोक की अमरीका के भीतर और बाहर कड़ी आलोचना हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि एटीएम से पैसा निकालने पर लगी पाबंदियों को बुधवार से हटा दिया जाएगा। फिलहाल बचत खातों पर से ये पाबंदियां पूरी तरह से नहीं हटाई गई हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने इन खातों पर से भी पाबंदी जल्द ही हटाने पर विचार करने की बात कही है। बचत खाते से भी अब एक बार में 24,000 रुपये निकाले जा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। म्यांमार में मुस्लिम वकील कोनी के अंतिम संस्कार में कई हजार लोग शामिल हुए हैं। रविवार को कोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यंगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर आ रहे कोनी के सिर में बहुत करीब से गोली मारी गई है। इस सिलसिले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, हालांकि अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं है। तुर्की में नाकाम तख्ता पलट की कोशिश के बाद सबसे बड़े मुकदमों में से एक की सुनवाई शुरू हो गई है। पूर्वी शहर इज़मीर में हो रही इस सुनवाई में 270 लोगों को अपने बचाव में दलीलें पेश करनी हैं। इनमें सेना के एक पूर्व मेजर जनरल और हिरासत में लिए गए 150 से ज़्यादा लोग हैं। इस घटना के सबसे बड़े संदिग्ध निर्वासित मौलाना फतेहुल्ला गुलेन पर भी उनकी गैरहाजिरी में मुकदमा चल रहा है। गुलेन 1999 से ही अमेरिका में रह रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई एक जेल परिसर के भीतर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में एक हवाई हमले में अलकायदा के दो संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि हमला अमरीकी सेना ने किया है। हमले का निशाना बना जोड़ा एक गाड़ी में सवार होकर शाबुआ जा रहा था। हमले से एक दिन पहले ही अमरीकी सेना ने आसपास के इलाके में अलकायदा के ठिकानों पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में एक अमरीकी सैनिक की मौत हो गई। इसके साथ ही कम से कम 14 चरमपंथी और कई आम लोग भी मारे गए। जापान में हादसे का शिकार हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के एक ऑपरेटर ने रिएक्टर कोर के उस हिस्से को ढूंढने में कामयाबी पाई है जो 6 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त भूकंप के बाद हुए हादसे में 3 रिएक्टर पिघल गए थे। अब तक हादसे के शिकार हुए कोर का कुछ पता नहीं चल सका था, लेकिन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने कहा है कि एक कैमरे से मिली तस्वीरों में बड़ी मात्रा में टूटा फूटा संयंत्र नजर आ रहा है। टेपको के मैनेजर युइची ओकामोटो ने कहा है, जांच के दौरान हम रिएक्टरों को रखने वाले पात्र और उनके आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने में सफल हुए हैं। टेपको को उम्मीद है कि जल्द ही सभी रेडियो एक्टिव सामानों का पता लगाकर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ब्राजील से आ रही मीडिया खबरों में कहा गया है कि देश के सबसे अमीर शख्स आई के बतिस्ता ने पुलिस के आगे समर्पण कर दिया है। उन पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलेगा। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। सात मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वालों पर पाबंदी लगाने के फैसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के कई शहरों, कस्बों और हवाई अड्डों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर लगभग 300 लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिनको ट्रंप प्रशासन निशाना बना रहा है। हम उनके समर्थन में खड़े हैं और अमेरिका ऐसा नहीं है, वो इससे बेहतर है। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं ट्रंप को सीधे ये संदेश देना चाहता हूं कि हम कोई पाबंदी नहीं चाहते, कोई दीवार नहीं चाहते और हम फांसीवादी अमरीका नहीं चाहते हैं। ये थी अमरीका में प्रदर्शनकारियों की आवाज़ें। पर अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के भी लगभग 10 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री टेरेसा मे को दी अर्जी में गुजारिश की है कि ट्रंप को दिया दावतनामा वापस लिया जाए, क्योंकि उनको ब्रिटेन का मेहमान बनाने का मतलब यह है कि महारानी एलिजाबेथ को शर्मसार करना। अमेरिका में मानवाधिकार संस्था इमिग्रेंट्स राइट्स प्रोजेक्ट के ली गेल्टन ने बीबीसी से कहा कि ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर पाबंदी का आदेश हड़बड़ी में और बुरी तरह लागू किया है। ये आदेश कुछ ज्यादा ही सख्त है और इसमें सब पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसे लोगों पर भी जो किसी भी तरह से सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते। दूसरी समस्या ये है कि अगर आप इस आदेश से सहमत भी हों, हम तो नहीं हैं, फिर भी इसे लागू करने का तरीका खतरनाक है। ये थे मानवाधिकार संस्था इमिग्रेंट्स राइट्स प्रोजेक्ट के ली गेल्नर्ट के शब्द। न्यूयॉर्क में पत्रकार सलीम रिजवी इन घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वाशिंगटन आदि शहरों के एयरपोर्टों पर रोके गए लोगों की मदद करने के लिए सैकड़ों वकील भी दिन रात मौजूद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही सीनियर सेनेटर जॉन मकेन और लिंजी ग्राहम ने एक बयान जारी करके कहा है कि देश भर के एयरपोर्टों पर अफरा तफरी से यह साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी करने से पहले उसको सही तरीके से जांचा परखा नहीं गया था। सेनेटर्स ने अपने बयान में आगे लिखा है कि हमें डर है कि इस आदेश से हमारी सुरक्षा बढ़ने के बजाय चरमपंथियों की भर्ती में ज्यादा मदद होगी। जॉन मकेन ने एक टीवी इंटरव्यू में भी इस कार्यकारी आदेश की निंदा करते हुए कहा कि इससे चरमपंथी गुट दाएश या इस्लामिक स्टेट को प्रोपेगेंडा करने में आसानी होगी।
आई थिंक द इफेक्ट विल प्रोबब्ली इन सम एरियाज गिव आइसिस सम मोर प्रोपेगेंडा।
लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सेनेटर्स की आलोचना का जवाब ट्वीट करके दिया, जिसमें लिखा कि ये दोनों सेनेटर गलत हैं और अप्रवासन के मामले में कमजोर हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि कार्यकारी आदेश अमरीका और अमरीकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जारी किया गया है और इससे विदेशियों को भी बहुत कम मुश्किल हुई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक एयरपोर्टों पर कुल 3,25,000 मुसाफिरों में से सिर्फ 109 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर रिपब्लिकन पार्टी के ही बहुत से सेनेटर और सांसद ट्रंप के बैन वाले आदेश का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि इसे लागू करने में गड़बड़ी हो रही है। रिपब्लिकन पार्टी के ही सेनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बॉब कॉर्कर ने भी एक बयान जारी किया और ट्रंप के बैन वाले आदेश को सही ढंग से लागू न करने के लिए निंदा की। सेनेटर बॉब कॉर्कर ने बयान में लिखा है कि ट्रंप प्रशासन को चाहिए कि वो फौरन इस आदेश पर दोबारा गौर करे और जो खामियां हैं उन्हें दूर करे। सेनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस आदेश की निंदा करते हुए कहा कि यह कार्यकारी आदेश घटिया और गैर अमरीकी है। ये कहते हुए उनका गला भी रूंध गया।
This executive order was mean-spirited and un-American.
सेनेटर चक शूमर ने यह भी कहा है कि अब ट्रंप द्वारा मनोनीत उनकी कैबिनेट के कई लोगों को सेनेट में मंजूरी से भी रोका जाएगा जब तक उनसे भी इस बारे में साफ जवाब नहीं मिल जाता है कि क्या ट्रंप प्रशासन मुकम्मल मुस्लिम बैन की नीति अपनाएगा। इस सिलसिले में अब सेनेट में इस राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर कार्रवाई को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक सेनेटर डायन फाइनस्टाइन एक बिल भी लाने वाली हैं, लेकिन सेनेट और प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, इसलिए इस प्रस्तावित बिल के मंजूर होने की संभावना बहुत कम है।
ये थी न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। इस आदेश के बाद बेचैनी पाकिस्तान में भी है। लोगों ने ट्रंप के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।
अच्छा, साइन था कि बाहर जाके हम कुछ सीख के आएँ, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर, ज़्यादा मौके होते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आता है। तो ये अच्छा साइन था कि वहाँ पर जाते थे लोग अपने आप को पॉलिश करके यहाँ पर आके सर्व करते थे। लेकिन अब एक थोड़ा सा है अफसोसनाक है कि पाकिस्तान उस उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है कि जिनके एंट्री बंद कर रहे हैं। वो
कोई भी कंट्रीज़ ले लें, वो अब दहशत गर्द से महफूज तो नहीं है ना। अब देखो, अब हुकूमत जो उनसे वो करेगी, अब दहशत गर्दी ख़त्म करेगी, उनसे बात करेगी, फिर आगे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। अभी हमारी हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को आगे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अमरीका जाना चाहूँगा, अगर मुझे अच्छी कोई फैसिलिटी या वहाँ पर कोई मुझे जॉब अच्छी मिलती है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। लेकिन अगर ये हालात देखते तो फिर मुश्किल है हमारे लिए।
हो सकता होता तो उन्होंने साथ ही बैन करना था, ना कि अभी, पहले ही उन्होंने कर लेना था। और मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उन ममालिक जैसे हैं जैसे वो हैं, इस वजह से नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अल्लाह ना करे वो खुद ही चला जाए कहीं, अल्लाह उसको ले जाए, वरना बड़ी मुश्किल पड़ेगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जानी है लोगों
को। ये थी आवाजें पाकिस्तान से, ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। आइए लौटते हैं एक बार फिर हिंदुस्तान की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे ताकतवर और अमीर क्रिकेट संस्था बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बागडोर नेताओं के हाथ से छीनकर चार गणमान्य लोगों के हाथों में दे दी है। इस समिति के प्रमुख होंगे पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी विनोद राय, उनके अलावा लेखक इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी अध्यक्ष विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना इडुलजी। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू न करने पर अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, पर क्या नई समिति क्रिकेट प्रशासन चला पाएगी? ये सवाल किया हमारी सहयोगी सुमरनप्रीत कौर ने क्रिकेट पत्रकार एयाज मेमन से।
देखिए, बड़ा दिलचस्प पैनल बनाया है। अब ये है कि ये सोच के चलना होगा कि ये इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, क्योंकि इसके बाद जो है वो इलेक्शन आएंगे, लेकिन जो दो तीन चार महीने जो भी हो इलेक्शंस तक, जब तक इनको ये संभालना होगा इनके बीसीसीआई के अफेयर्स, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं प्लेयर्स के वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है उसके चॉइसेस अलग अलग इसलिए है, जैसे रामचंद्र गुहा है जो एक तरह से क्रिकेट हिस्टोरियन भी है, क्रिकेट के शौकीन भी है और एक मॉरल पोजिशन ले सकते हैं फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो फैन चाहते हैं या कि गेम क्लीन अप हो जाए तो वो आप रामचंद्र गुहा में देख सकते हैं। डायना इडल जी जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी है, कैप्टन भी रही है इंडियन क्रिकेट की, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि क्योंकि इनके पास बहुत तजुर्बा है, बहुत कोशिश की थी उन्होंने कि वुमेन्स क्रिकेट को ऊपर लाए जब बीसीसीआई के अंडर नहीं थी वुमेन्स क्रिकेट, और उनके उसके अलावा रेलवेज में भी बहुत अरसे तक काम किया है। तो और कोई क्रिकेटर अभी मेन्स क्रिकेट में इतना इजिली अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि या तो उनके टर्म्स एक्सपायर हो गए या वो चाहेंगे नहीं अब कि आए और फिर जो आने वाले इलेक्शन में उनका टर्म जो है वो खराब हो जाए, उसमें खलल आ जाए। मेरे ख्याल से विक्रम लिमये क्योंकि सीईओ रह चुके हैं या रहे आईडीएफसी के, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपीरियंस भी है, फाइनेंस में के मैटर्स में वो काफी उनको जानकारी है। और जहां तक विनोद राय का सवाल है तो एक लोढ़ा पैनल ने बताया था कि कैग के रिप्रेजेंटेटिव को होना होगा बीसीसीआई के पैनल में, तो शायद इसी कोशिश में उन्हें भी अपॉइंट किया गया।
लेकिन सर, ये एक स्पोर्ट्स बॉडी है और खिलाड़ी ना के बराबर हैं इसमें।
जो लोढ़ा पैनल के रिकमेंडेशन थे उसके हिसाब से बहुत से क्रिकेटर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे या तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या वो अब अगर आप आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनका टर्म वो सोचेंगे कि शायद जाया हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद किसी और क्रिकेटर्स को अब लेने की जरूरत नहीं महसूस की है, क्योंकि इलेक्शंस अब आने वाले हैं। जैसे ही ये इंटरिम बोर्ड अनाउंस करेंगे इलेक्शंस, तब शायद फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं।
बीसीसीआई की बागडोर अब चार गणमान्य लोगों के हाथों में। जानकारी दे रहे थे क्रिकेट पत्रकार एयाज मेमन। शनिवार की रात दिल्ली के पास गुड़गांव से आगे मनपुरा गांव में 7-8 नकाबपोश लोगों ने पुलिस के मुताबिक एक कारखाने में घुसकर दो महिलाओं से हथियारों की नोक पर बलात्कार किया, साथ ही वहां रहने वाले कामगारों से मारपीट और लूटपाट भी की। हमारे संवाददाता जुबैर अहमद मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद एक चश्मदीद से बात की।
जो चश्मदीद उस घटना के गवाह हैं मुंशी जी, इस फैक्ट्री की जो रखवाली करते हैं वो हमारे सामने हैं। आप अपना नाम बताएं मुंशी जी।
कंचन सिंह जी।
कंचन सिंह आपका नाम है, जो घटना घटी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
ऐसा जी, वो बाहर से मेरे मिलने वाला आया एक, उसने कही मुंशी जी गेट खोलो, मैंने गेट खोल दिया जी। उसने एक दूसरा वो बदमाश आया, उसने गेट लात मार के खोल दिया और वो कहने लगा तेरे पास हथियार है क्या, हथियार दे। मैंने कही सर हमारे पास, दीवान जी खाकी वर्दी में था, मैंने कही दीवान जी हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम तो यहाँ वर्कर हैं जी, हम हथियार रखते हैं यहाँ।
कितने लोग थे टोटल?
6-7 लोग थे।
और सबके चेहरे छिपे?
चेहरे बंधे हुए थे, आँख आँख दिख रही थी, और जब हम आँखों की देखते थे जब ही मुँह पर थप्पड़ और बैटरी की लाइट लगाते थे, अन्यों कहते थे नीचे नजर।
उनके पास हथियार भी थे?
हाँ जी, एक पीछे लटक रहा हथियार, एक देखा, एक पर डंडा आया, एक पर सरी आया जी।
और आपके फोन वगैरह फेंक दिए उन्होंने?
हाँ, फोन में कहा तेरा फोन कहाँ, मेरा फोन लेकर और जी फेंक दिया। और जाते समय ये कह गए कि उल्लू के पट्टे तेरी सिम को मैं इस कॉनिकल पर रखे जाता हूँ, सवेरे ले लीजिए, परेशान मत होइए, ये कह के और चले। इसके बाद जी उन्होंने स्त्रियों के साथ, जब हम बंद करके कुंडी लगा दी जी, और स्त्रियों के साथ कहाँ ले गए कहाँ नहीं, उनके साथ बलात्कार।
आपको समझ में नहीं आया कि बलात्कार कर रहे हैं? उनकी आवाज, चीखने चिल्लाने
की? नहीं नहीं, कोई चीख चिल्लाने की आवाज, कहीं दूर ही ले गए बाहर।
अच्छा, खेतों में?
खेतों में नहीं, फैक्ट्री में पल्ली साइड में। अच्छा, हम यहाँ बंद हैं, फैक्ट्री में पल्ले कोने पे ले जाए।
आपको कब पता चला कि उनके साथ बलात्कार हुआ?
उन्होंने जब पुलिस आई तो उन्होंने जब भी नहीं बताया शर्म के मारे, फिर अपने जो हमारे मालिक आ गए और मुर्गा फार्म के मालिक आ गए तो उन्होंने उन्हें बताया।
और यहाँ पे रह के हमने सुना उन्होंने मुर्गा भी बनाया, खाना
हाँ,
भी
मुर्गा बनाया जी, मुर्गा बनाया। पहले मेरे कमरे से सिलेंडर लिया, उसकी नली टूट गई, फिर एक साइड में कमरा है मेरे साथी का, उससे सिलेंडर लिया और वहाँ मुर्गा बनाया जी। अब ये पता नहीं कितने मुर्गा बनाए कितने नहीं, फिर वो खा ऑफिस में खा के बैठ के अपनी उन्होंने एक मीटिंग ली है। मीटिंग लेने के बाद फिर वो बहुत देर बाद जब चले गए, जब शांति हो गई, तो एक लड़के का हाथ ढीले रह गए, उसने हाथ खोले और जी फिर हमारे भी चक्कू से वो पट्टी अट्टी जो बंधे हुए वो काट दी और हम भी खोल कर निकाल दिया, हमने अपना फाटक तोड़ा और बाहर निकल कर और साथ ही खोल दिए।
गुड़गांव से आगे मनपुरा गांव में दो महिलाओं से सामूहिक बलात्कार, ये बातचीत की हमारे संवाददाता जुबैर अहमद ने। दिल्ली के पास नोएडा के अघापुर गांव में आज जश्न का माहौल था, जश्न भी ऐसा जिसकी खबर दुनिया को बताने के लिए पत्रकार वहां मौजूद थे। वजह थी इस गांव के मनोज कुमार बोसाया, या जिन्हें आप मनवीर गुज्जर के नाम से जानते हैं, उन्होंने बिग बॉस में अपना झंडा गाड़ दिया, या अगर गांव वालों की भाषा में कहें तो मनवीर ने बिग बॉस में अपना लठ गाड़ दिया है। हमारे साथी सलमान रावी जब गाँव पहुंचे तो नौजवान सड़कों पर निकले थे।
आप ये आवाजें सुन रहे हैं नोएडा के सेक्टर 41 के गांव आगापुर से, और ये गांव बिग बॉस के विजेता मनवीर गुजर का है। जाहिर सी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लड़का, कोई नौजवान लड़का इस इलाके से इतनी बड़ी एक उपलब्धि हासिल किया हो। और आज ये मैं यहां पर खड़ा हूं मनवीर के घर में, आगापुर सेक्टर 41 नोएडा में। मेरे सामने कई बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े जिसमें लिखा जा रहा है वोट एंड सपोर्ट देसी इंडियन, देसी इंडियन मनवीर गुजर। और मेरे साथ मनवीर के भाई भी हैं सचिन। सचिन भाई बधाई हो, कैसा लग रहा है आज आपको?
राम राम जी, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत खुशी हो रही है। एक देशी ने जीता है, एक देशी बंदा जीता है, तो एक आम आदमी की जीत है ये, भाई अकेले की जीत नहीं है, पूरे एक आम आदमी की जीत है। पूरे इंडिया वालों ने सपोर्ट किया और सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगा दिल से।
और कभी लगा आपको कि इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, ये एंट्री कैसे मिल गई उनको?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब उन्होंने हमें बताया था शुरू में तो हमें यकीन नहीं हुआ, हमने सोचा मजाक करता रहता है, शुरू से मजाक कर रहा है, तो हम सब बोलते थे, कहता बिग बॉस में हो गया था, मैंने कहा यार क्यों मजाक कर रहा है, इधर उधर के छोटे वोटे में हो गया, ऐसी पागल बना रहा है हमको, किसी को यकीन नहीं हुआ। जब शुरू में कैमरा वाले आए, सब चीज़ें आई उनकी, जब हमें यकीन हुआ, हमसे उनसे पूछा भैया कहाँ से हो, उन्हें बोला कलर्स से है सर।
आज मेरे साथ बहुत सारे उनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं जो साथ में जिम जाते थे, चूंकि मैं बताना चाहता हूँ कि उनको जिम का, पहलवानी का भी बहुत शौक था, और काफी हट्टे कट्टे नौजवान मेरे साथ। आपका नाम क्या है साहब?
जी राहुल नाम है जी। पहले जब एंट्री करी थी हम सोचे भाई जीत के आएगा बाहर।
ये बताइए,
छोटा गांव है नोएडा में, बहुत इसको बहुत कम जानते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी नहीं है अगापुर के, मैं बताऊँ तो आपको, और गांव के बोर्ड भी लगे होते हैं अथॉरिटी की तरफ से, अगापुर के बाहर बोर्ड भी नहीं है ना, ऐसी कोई सुविधा है, तो मैं बताऊँ अब एक तरह से अगापुर को जान गए लोग, अब कोई आता है तो कहता है अगापुर कौन, अच्छा मनवीर वाला गाँव, तो अपने आप लोग पहुँचने लगे।
लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि ये सामने लिखा हुआ है वोट करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए एसएमएस के नंबर दिए हुए, यू कैन वोट 100 टाइम्स एट वंस फ्रॉम सिंगल मेल आईडी और फोन नंबर, तो ये अभियान चलाया था आप लोगों ने?
हाँ जी अभियान चलाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कम दिखते हैं लोग, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। बिग बॉस अभी सब लोगों ने अभी देखना शुरू किया है, क्लच की ऐप सबने अभी डाली है, तो लोगों को नॉलेज नहीं थी। कितनी लोग हमसे फ़ोन करते थे कि कितने SMS हो सकते हैं भाई, कितनी वोट हो सकती है, तो हम उनको समझाते थे। हमने उनका कंडीशन देखी थी, टर्म्स एंड कंडीशन देखा था, तो उसमें हमें पता चला उसके बिहाफ में कि हाँ एक दिन में 100 कर सकते हैं एक ईमेल ID से और एक नंबर से। तो हमने लोगों को इस चीज़ को समझाया, इस चीज़ का हमने प्रमोट किया, सब लोगों ने इसमें मदद की बहुत लोगों ने।
ये बताइए कि बचपन में आप लोगों ने सब साथ में वक्त गुजारा होगा, क्या कभी लगता था कि एक अलग तरह से पहचान बनाएंगे अपनी मनवीर?
बिल्कुल, उसके जो है पहले से उसको एक अंदर से वो आती थी कि मैं कुछ बनूंगा, हमसे मजाक में बोलता रहता था, लेकिन हमने कभी उस पर वो नहीं किया कि ये सच में ही कुछ बन जाएगा।
एक इमेज था मारपीट करने वाले का,
ये तो हमारी मनवीर भाई ने जो छवि थी, जो हमारी एक छवि धूमिल कर दी थी और जातियों ने, वो मनवीर भाई ने उसको क्लियर कर दिया, सबके सामने ये बता दिया है कि हमारी छवि एक गुंडे बदमाशों की छवि नहीं है, हम बहुत अच्छे आदमी, हम बिग बॉस के घर में पहुंच सकते हैं।
गुजरों को बदनाम किया गया था,
किया गया था सर जी, हम बिग बॉस के घर में पहुँच सकते हैं, धुआं उठा सकते हैं और लठ भी गाड़ सकते हैं।
लेकिन
ये नौजवान कह रहे थे कि धुआं उठा सकते हैं और लठ भी गाड़ सकते हैं। बिग बॉस में मनोज कुमार बोसाया जीते हैं और आज सोमवार है, समय है आपकी राय का।
आपकी राय आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरा वंदना का।
नमस्कार, मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी
जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज चिट्ठियां भी हैं और ईमेल भी हैं, तो कुछ पोस्ट कार्ड से शुरू करती
हूँ। जी, हमेशा पोस्ट कार्ड से शुरू करना चाहिए, दूर से चल के आती हैं ये चिट्ठियां।
जी, और बहुत सारे पोस्ट कार्ड जो हैं वो अभी भी उसी मुद्दे पर हैं कि जिन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कार्यक्रम उनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हरी सिंह साहब हैं, ये जिला सिरसा हरियाणा से इन्होंने लिखा है कि पूरी टीम को मेरा नमस्कार, मैं 1995 से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, लेकिन आजकल जो कार्यक्रम है वो साफ सुनाई नहीं देते, कभी कभी 5 मिनट और कभी कभी तो 5 मिनट भी सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं सुनना जब तक धरती और आसमान रहेगा।
बहुत शुक्रिया आपका, आप जैसे श्रोताओं की वजह से हम जो भी हैं वो हैं, और हमारे लिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि जिस दिन लोग हमें नहीं सुन रहे होंगे उस दिन हम क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें सुनते रहें और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये परेशानियाँ दूर हो सके। तकनीकी समस्या है और उसका उपाय निकालने की कोशिशें भी जारी हैं।
जी, ये कुछ इसी तरह की समस्या हमारे और श्रोताओं ने भी गिनवाई है। रामपाल सिंह तोमर हैं, ये जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हैं, और ये साहब हैं मशकूर अहमद जी जो समस्तीपुर बिहार से लिखते हैं। समस्या इनकी भी वही है कि सुनाई नहीं पड़ रहा, प्लीज कुछ करिए इस बारे में।
इसके पहले वाली चिट्ठी कहाँ से आई थी जो आपने?
जी, ये हरियाणा दिल्ली से एकदम सटा हुआ।
तो हरियाणा और तराई उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी और बिहार का समस्तीपुर, इसका मतलब ये है कि समस्या किसी एक खास जगह पर न होकर ज्यादातर जगहों पे है, और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।
जी, तो अगला पोस्ट कार्ड है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव साहब का, जो हमारे बहुत ही नियमित और पुराने श्रोता हैं, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी। तो ये गिना रहे हैं कि राजेश जोशी ने जो कार्टूनिस्ट आबिद सूरती से बात की थी वो इन्हें काफी पसंद आई। साथ ही में ये कह रहे हैं कि जब से रामदत्त त्रिपाठी दोबारा एक तरह से जुड़ गए हैं, विश्लेषण है उनके पसंद आ रहे हैं, तब से एक तरह से BBC हिंदी में नई जान आ गई है।
बहुत शुक्रिया आपका, रामदत्त जी अनुभवी पत्रकार हैं और आबिद सुरती वो शख्सियत हैं जिनके कार्टून धर्मयुग के दिनों से देखकर बड़े हुए हैं, और वो कार्टूनिस्ट से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरह का उनका जीवन है, संघर्ष है, और अब जो वो पानी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जी इन सबको मिलाकर एक बहुत ही अनूठी शख्सियत आबिद सुरती हैं। तो वो जब दफ्तर आए थे तो हम सबको बहुत मज़ा आया था।
अब कुछ ईमेल भी ले लेते हैं, और इनका नाम है आमिर खान। ये कहते हैं कि दिल्ली सेवा कुटीर में रहता हूँ, और इन्हें नाराजगी है कि जो हाल ही में 29 तारीख को जो क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ब्लाइंड के लिए, फॉर द ब्लाइंड, उसका समारोह था लेकिन BBC ने इसकी कोई चर्चा नहीं की।
वंदना मेरे सामने बैठी हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने कुछ समय पहले, शायद पिछले साल,
जी क्योंकि ये टूर्नामेंट होते रहते हैं, भारत की टीम, पाकिस्तान की टीम, इन दोनों की ब्लाइंड टीम्स हैं, तो मैंने एक श्रृंखला की थी कि किस तरह से ये लोग खेलते हैं, क्या रूल्स अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं क्या जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स होते हैं, और उपलब्धियां हैं जो कप्तान थे उनकी, जो जिंदगी काफी दुश्वारियों भरी रही, तो एक अच्छी खासी श्रृंखला मैंने की थी और इस बार अभी शुरू ही हुआ है तो कोशिश करेंगे कि जरूर इस बार भी श्रोताओं के लिए कुछ लेकर आए
जी।
अगली एक ईमेल है अरुण कुमार से और जगह छिंदवाड़ा है
जी।
ये एक तरह से मेरे लिए ही है
जी।
इन्होंने कहा है कि 24 जनवरी को नमस्कार भारत में वंदना जी की रिपोर्ट अच्छी लगी कि पंजाब में क्यों अभी तक दलित मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन एक इनकी शिकायत है कि शायद छोटी सी त्रुटि हो गई कि वो रोपड़ जो जिला है वहां का, वहां उनकी पैदाइश हुई है और शायद रिपोर्ट में होशियारपुर कह दिया गया, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
किसके बारे में? कांशीराम के बारे
जी जी। ये होशियारपुर से ये चुनाव जीते थे
जी।
तो ये कह रहे हैं कि इसी तरह और भी कई गलतियां रही कार्यक्रम में, शुक्रवार था दिन तो उसको गुरुवार बोल दिया गया, तो बीबीसी से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी
हम ख्याल भी रखेंगे और हम बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी शर्त के गलती हुई है तो हम माफी चाहते हैं
जी, बिल्कुल। और इन्होंने कार्यक्रम सुना, तारीफ की, आलोचना भी की, दोनों के लिए
अच्छी बात, यही अच्छी बात कि जब हम गलती करें तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने गलती की है ताकि हम वैसी गलतियां दोहराने से बचें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी राय में आज इतना ही। चलते चलते वंदना जी पता बताइए।
पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110001। और अगर ईमेल करना चाहें
तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपकी राय में आपके खतों का इंतजार हमें रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं bbchindi.com के पहले पन्ने पर। मेरे सामने स्क्रीन है, ये हम देखते हैं कि इसमें आज क्या छपा है। जो अभी कुछ ही देर पहले आपने खबर सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को बीसीसीआई की कमान सौंपी है। इस पर सोशल मीडिया में काफ़ी दिलचस्प टिप्पणियां आई हैं। bbchindi.com पर यह खबर छपी है जिसमें एक टिप्पणी है, परेश रावल फैन ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में रामचंद्र गुहा को नियुक्त किया, ये हो क्या रहा है, वो क्या करेंगे, क्रिकेट आफ्टर गांधी या नेहरू ने कैसे क्रिकेट को क्रिएट किया। इस तरह की दिलचस्प टिप्पणियां अगर आपको पढ़नी है तो बीबीसी हिंदी पर आप आइए, और भी कई दिलचस्प समाचार वहां हैं और तस्वीरें आपको बहुत सुंदर मिलेंगी। अब वक्त है एक नज़र खेल समाचारों पर डालने का।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। नागपुर में भारत और इंग्लैंड के बीच कल हुआ दूसरा T20 मैच जिसे भारत ने अपने नाम किया, इंग्लैंड को हराया 5 रन से। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने कहा है कि जो रूट को मैच के निर्णायक क्षणों में पगबाधा आउट होने के अंपायर के फैसले के कारण उन्हें भारत के खिलाफ दूसरा T20 मैच गंवाना पड़ा। वो कहते हैं कि वे ICC मैच रेफरी के सामने ये मामला उठाएंगे। अंपायर सी शमसुद्दीन ने रूट को आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर LBW आउट दिया जबकि गेंद बल्ले से लगी थी। खैर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयान मॉर्गन कहते हैं कि अब जो मुकाबला बेंगलुरु में होगा उसमें वो उम्मीद करते हैं कि वो जीत दर्ज करें और सीरीज को भी अपने नाम करें।
अब हम जिस तरह से खेल रहे हैं मैं खुश हूँ, हम बेशक हार गए, टीम में जो मैच्योरिटी है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। अब हमारा हालात पर पहले से बेहतर कंट्रोल है, अगला मुकाबला बेंगलुरु में होगा, दोनों टीमें बराबरी पर हैं, कोई आगे या पीछे नहीं, अब हम चाहेंगे कि बेंगलुरु में जीतें और सीरीज अपने नाम करें।
भारत और इंग्लैंड के बीच अब अगला मुकाबला होगा बेंगलुरु में 1 फरवरी को। आज ऑकलैंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। 31 जनवरी यानी कल से शुरू होगा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये मुकाबला 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा। ये मैच होंगे नई दिल्ली, फरीदाबाद, इंदौर, बम्बई, कोची, भुवनेश्वर, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देश है भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
आप में से बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हमें साफ नहीं सुनाई पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो रहा है। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने विवादित आदेश को सही ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीते सप्ताह के आखिरी दिनों में कुल 3,25,000 यात्रियों में से सिर्फ 109 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ATM से पैसा निकालने पर लगी पाबंदियों को बुधवार से हटा दिया जाएगा। फिलहाल बचत खातों पर से ये पाबंदियां नहीं हटाई गई हैं। म्यांमार में मुस्लिम वकील कोनी के अंतिम संस्कार में कई हज़ार लोग शामिल हुए हैं। तुर्की में नाकाम तख्तापलट की कोशिश के बाद सबसे बड़े मुकदमों में से एक की सुनवाई शुरू हो गई है। यमन में एक हवाई हमले में अलकायदा के दो संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो ये थे मुख्य समाचार। मुख्य समाचारों के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगर आप उत्तर भारत में हैं तो सर्दियों की इस ठिठुरती शाम मैं आपका अभिवादन करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजित सारथी ने। नमस्कार।